भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। ग्रंथराशिमद् भागवतम स्कंद चार अध्याय 16 श्लोक संख्या 5। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। ये राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस प्रकार वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्गलोक का पालन करेगा। यथा समय वो उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। तात्पर्य, विभिन्न कार्यों का भार उठाने वाले जो देवता इस जगत का पालन करते हैं वे भगवान के सहायक मात्र हैं। जब भगवान का कोई अवतार इस लोक में आता है तो सूर्य चंद्र इंद्र सभी देवता उनके साथ हो लेते हैं। फलस्वरूप ईश्वर का अवतार विभिन्न देवताओं का भी कार्य संपन्न करते हुए लोकों को व्यवस्थित रखता है। पृथ्वी लोक की रक्षा तो उचित वर्षा पर आश्रित है और जैसा कि भगवद गीता तथा अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि वर्षा का भार संभालने वाले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सब प्राणी अन्न से भरण पोषण करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ स्वधर्म से प्रकट होता है। इस प्रकार यज्ञ को उचित विधि से संपन्न होना अनिवार्य है। जैसा कि यहाँ पर इंगित किया गया है, राजा पृथु अकेले समस्त नागरिकों को ऐसे यज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे कोई अभाव या कष्ट न रहे। किंतु कलयुग में तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्य में सरकार की कार्यकारी शाखा के अध्यक्ष तथाकथित राजा और राजाध्यक्ष हैं जो मूर्ख तथा धूर्त हैं और प्रकृति के गुण रहस्यों तथा यज्ञ के नियमों से सर्वथा अनजान हैं। ऐसे धूर्त सदैव योजनाएं बनाते हैं जो विफल होती रहती है और परिणाम स्वरूप जनता को उपद्रव सहने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए शास्त्रों का उपदेश है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस प्रकार सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए जनता को
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यह अध्याय महाराज पृथ्वी की स्तुतियों का गान कर रहा है। तो महाराज पृथु के इस स्तुति में जो बंदी जन हैं या जो जिनका कार्य ही है गुणगान करना, स्तुति आदि करना किसी धार्मिक या किसी फेस्टिवल में या किसी विशेष सेरेमनी में, तो ऐसे पृथु महाराज के कार्यकलापों का या चरित्र का या आगे चलकर ये पृथ्वी महाराज क्या करने वाले हैं उनका विषद वर्णन या गुणगान ये लोग कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अकेला राजा है सारे जीवात्माओं का पालन करने के लिए समर्थ है, क्योंकि वो क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के यज्ञों को कराएगा और करवाएगा जिसके द्वारा इस पृथ्वी का जीवों का पालन भी होगा और जब यज्ञ होगा तो स्वर्ग लोक के जो निवासी हैं देवतागण हैं वो भी संतुष्ट या उनका भी पालन करने का सामर्थ्य पृथ्वी महाराज में है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में यज्ञ पर जोर देते हैं और यज्ञ पर जोर देते हुए चैतन्य चरितामृत के उस श्लोक को कोट करते हैं और वो कहते हैं हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग में केवल एक ही यज्ञ कार्य करता है, जैसे कि हम कई बार सुनते हैं कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापारे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना, कि भगवान बहुत सरल हो जाते हैं अलग अलग युगों में विभिन्न कार्य करता है कोई व्यक्ति तो उसके द्वारा वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कृतेय ध्यायतो विष्णु कृतयुग मतलब जो सत्ययुग है उसमें भगवत प्राप्ति करना या भगवान को समझना या उनको प्रसन्न करना कौन सी विधि थी, तो शास्त्र कहते हैं ध्यान लगाने की विधि है। और जैसे ही ये युग आगे बढ़ते हैं त्रेता युग आता है, त्रेतायम यजतो मखे, यज्ञ का मतलब ही है विष्णु, यज्ञ अर्थात कर्मनोन्यत्र लोकयम कर्म बंधना, यज्ञ का मतलब है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना और ऐसे कार्यों के द्वारा जो जीव है अपने भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकता है। इसलिए यज्ञ की गवेषणा सारे शास्त्र करते हैं। तो सत्ययुग में एक प्रकार का यज्ञ है कि ध्यान लगाना, त्रेतायुग में तो डायरेक्ट यज्ञ ही करना, यज्ञ कुंड में आहुतियां देना, लेकिन जब द्वापर युग आता है तो उस समय द्वापारे परिचर्यायाम भगवान के बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना होती थी, विग्रहों की ऐश्वर्य के साथ उपासना की जाती थी। लेकिन कलियुगा में यज्ञ क्या है? कलो तद हरि कीर्तना। कलियुगा में भगवान का जो पवित्र नाम है वो वास्तव में यज्ञ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम हर समय, चाहे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हो या श्रीमद् भागवतम का मध्य हो या श्रीमद् भागवतम का अंत हो, हर समय श्रीमद् भागवतम में ये जो हरिनाम संकीर्तन है उसको ग्लोरीफाई किया है, उसका गुणगान किया है। यद नामो विवशो गृणन यद विभेति स्वयं भयम्। कि कोई व्यक्ति शुरुआत में ही पहले स्कंद में शुद्ध गोस्वामी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के इन नामों का उच्चारण करता है, जिन नामों का उच्चारण करने मात्र से जो भय है वो भी स्वयं कांपने लगता है। और हम भागवतम के मध्य में देखते हैं पूरा एक कई अध्यायों में हरिनाम की महिमा का वर्णन किया है। अजामिल का जो उपाख्यान है, अजामिल का जो चरित्र है उसका वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी नाम की महिमा को स्थापित करते हैं। और श्रीमद् भागवतम का अंत देखते हैं, जो 12वां स्कंद है उसमें शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कलयुग के लक्षणों का वर्णन करते हुए, और जैसे उन्होंने कलयुग के दुरावस्था या कलयुग के विपरीत लक्षणों का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि अस्ति एक महत् गुण कलो दोषो निधि राजन, अस्ति एक महत् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रज। कि कलयुग तो सारे दोषों से भरा पड़ा है, लेकिन हाँ इस कलयुग में एक बहुत ही विशेष गुण है, क्वालिटी है। इसी एक गुण के कारण ही परीक्षित महाराज ने कलि को क्या नहीं किया, मारा नहीं, मृत्युदंड नहीं दिया, अपने उसको भी अपना प्रजा समझते हुए उनको स्थान दे दिया। द्युत्यम पानम श्रिया सुना, जो ये चार स्थान है, ये चार स्थान परीक्षित महाराज ने उस कलि को दिए, क्योंकि कलि के पास एक गुण है। कौन सा गुण है? नाम संकीर्तन। कलो दोषो निधि राजन अस्ति एक महत् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन ये सर्वोत्कृष्ट जो क्वालिटी है वो कलयुग में है। इसी कारण से जो आचार्य गण है इस कलयुग को कोई नॉर्मल कलयुग नहीं कहते, इस कलयुग को आचार्य गण कहते हैं धन्य कलि। ये कलि बहुत धन्य है क्योंकि इस कलयुग में महावदान्याय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे। ब्रह्मा के लिए भी जो भगवत प्रेम बहुत अधिक दुर्लभ है वो भी सारे जीवों को उन्होंने बांट दिया। पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान, चैतन्य महाप्रभु ने विचार नहीं किया, जय जहां पाया तहां करी दान। महाप्रभु ने विचार नहीं किया कि ये व्यक्ति क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, ये पतित है या पतित से बड़ा है। चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा, चैतन्य महाप्रभु ने हर एक जीव को ये कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, ये चैतन्य महाप्रभु का क्वालिटी है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस नाम संकीर्तन के वास्तव में पिता है, फाउंडर है। और ये नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु कहां से लेकर आते हैं अपने साथ में, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो हरिनाम संकीर्तन है आध्यात्मिक जगत गोलक वृंदावन से अपने साथ लेके आते हैं, क्योंकि ये प्रेम नाम संकीर्तन है, ये सर्व सामान्य नाम संकीर्तन नहीं है। क्योंकि इस नाम संकीर्तन में हर एक जीव को प्रेम जो दुर्लभ है वो देने का सामर्थ्य है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के जो आखिरी श्लोक है 12वें स्कंद का 13वें अध्याय में जो 23वां श्लोक है उसमें भी शुकदेव गोस्वामी आखिरी में बोलते बोलते नाम संकीर्तन की महिमा को स्थापित करते हुए श्रीमद् भागवतम को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। वो कहते हैं नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। कि मैं उस हरि को प्रणाम करता हूं जिनको प्रणाम करने मात्र से दुख और जो विपदा है वो जीवन से खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, उनका जो नाम संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सर्व पाप प्रणाशनम। तो नाम संकीर्तन सारे पापों को नाश करने वाला है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कलिम सभा जयंति आर्या गुणाज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। कलियुग में सारे जो शास्त्र हैं, ऋषिज हैं, मुनिज हैं, वेद है, उपनिषद आदि हैं, वो सब क्या करते हैं, गुण गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। गुणाज्ञा सार भागिना, हाँ, जो आर्य लोग हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने वाले लोग हैं, वो कैसे है, गुणाज्ञा है। गुणाज्ञा का मतलब है जो वास्तव में जीवन के वैल्यू या महत्व को जानते हैं। और सार भागिना, जो लोग इसेंस या सार को लेने में दक्ष हैं, सार को ग्रहण करने में दक्ष हैं, हम वो क्या करते हैं, यत्र संकीर्तने नैव, वो संकीर्तन को स्वीकार करते हैं। सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, क्योंकि संकीर्तन के द्वारा ही, नाम संकीर्तन के द्वारा ही सारे जो स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति होने वाली है। और असली स्वार्थ क्या है, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, नमे विदु स्वार्थ गते में विष्णु, जो भोगवादी है, भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो अपने स्वार्थ को नहीं जानता है। स्वार्थ भगवान विष्णु है, कृष्ण है, उनकी सेवा में लगना ये जीवन का असली स्वार्थ है। तो यदि कोई व्यक्ति केवल नाम संकीर्तन को स्वीकार करता है, भगवान के पवित्र नामों को उनका आश्रय ग्रहण करता है, तो वो वास्तव में उसने सारे शास्त्रों के सार को उसने ग्रहण किया है। सर्व स्वार्थों भी लभ्यते। एक बार सारे जो ऋषि मुनि हैं वो एकत्रित हुए और वो बहुत अधिक डिस्कस करने लगे, चर्चा करने लगे। चर्चा करते हुए उन्होंने क्या किया, प्रश्न, एक प्रश्न उन्होंने उठाया, वो प्रश्न था, कस्मिन काले अल्प को धर्म ददाति सुमहत फलम, कि कौन सा ऐसा समय है कि जिस समय थोड़ा सा भी धर्म का पालन करने मात्र से जीव को महान फल की प्राप्ति हो सकती है। तो सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए थे, लेकिन वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, किसी निष्कर्ष पर उन्होंने पहुंच नहीं पा रहे थे। आपस में ही डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव के पास जाना होगा। तो ऐसे सारे मुनि व्यासदेव के पास जाते हैं, तो देखा, दूर से देखा, व्यासदेव तो नदी में स्नान कर रहे हैं, अकेले मस्त हैं, और ये सारे नदी के किनारे दूर दूर से देख रहे हैं, और उनको आवाज सुनाई दे रही थी व्यासदेव की। और व्यासदेव स्नान करते करते कोई मंत्र उच्चारण आदि नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जोर जोर से बोल रहे थे कि कलयुग ही श्रेष्ठ है और शूद्र ही श्रेष्ठ है। अब ये सारे मुनि भ्रमित हो गए कि ये क्या है, कि ये जो व्यासदेव है वो चिल्ला रहे हैं शूद्र ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा जब इन सब मुनियों ने सुना, तो व्यासदेव को दूर से प्रणाम करके इंतजार करने लगे। व्यासदेव स्नान करके बाहर आए, बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि आप बताओ, क्यों आप ये कह रहे हो कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है और शूद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा, यत् कृते दश भीर्व श्रेत्रेतायाम हयनेन तत् द्वापारे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलो, कि यत् कृते दशभिर् वर्षे, कि कृतयुग या सत्ययुग में 10 साल आपको लगते हैं वो जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए, त्रेता में 1 साल लगता है, द्वापर में 1 महीना लगता है, लेकिन ह्यहोरात्रेण तत्कलो, वही भगवत प्राप्ति करने के लिए कलयुग में क्या चाहिए, 1 दिन या 1 रात्र बस। इस प्रकार से उन्होंने कहा, इसी कारण से कलयुग श्रेष्ठ है और कलयुग में कौन है, कलो शूद्र संभवः, कलयुग में तो सारे शूद्र हैं, लेकिन ऐसे शूद्र होने के बावजूद भी उनके लिए बहुत बड़ी जो संपदा है, धरोहर है, वो प्राप्त हो सकती है जब ऐसे कलयुग के जीव क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है श्री चैतन्य महाप्रभु का, और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगार्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की। तो वास्तव में कलियुगा में वही जीव सुमेधसा है, बहुत बुद्धिमान है, जिनकी मेधा बहुत अधिक प्रखर है, वही लोग वास्तव में जो नाम संकीर्तन यज्ञ है उसको स्वीकार करेंगे, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग प्रकट होंगे। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर भी इसी श्लोक की प्रशंसना में कहते हैं, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि जो भगवान का नाम है हरि नाम, कृष्ण नाम बहुत अधिक मधुर है, बड़ा ही मधुर, जय जन भजे कृष्णा से बड़ा चतुर। जहां शुकदेव गोस्वामी ने सुमेधसा कहा है, वहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण का भजन करते हैं, और भजन भी कैसे करते हैं, नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर। तो ऐसे जो जीव है वो वास्तव में एक्सपर्ट है, चतुर है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से यही सिखाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा प्राप्त किया निमाय पंडित ने, और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब वृंदावन की ओर जा रहे थे, जाते जाते वो बनारस पहुंचे। बनारस जो मायावादियों का अड्डा है, तो वह प्रकाशानंद सरस्वती आदि जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा सन्यासी हया करे नर्तन गायन, सन्यासी होकर भाव लोगों के संग में तुम नाचते गाते रहते हो सड़कों में, तुम्हें तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत का अध्ययन करना मेरे लिए नहीं है, इसका कारण मैं सुनाता हूं। तो वो महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते कि क्यों मैं ये कर रहा हूं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद यहर कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। उन्होंने कहा प्रभु कहे, प्रभु कौन है, महाप्रभु श्री चैतन्य देव। उन्होंने कहा हे श्रीपाद आप ये कारण सुनो कि मेरे नाचने गाने का सड़कों में जाने का कारण क्या है, क्योंकि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने मुझे मूर्ख समझा है, और उनके शासन उनके अधिकार के नीचे में कार्य कर रहा हूं। मूर्खतो में तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। उन्होंने कहा कि तुम तो मूर्ख हो, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के आगे शिष्य को कैसे होना चाहिए, मूर्ख नंबर वन। तो महाप्रभु अपने गुरु के सामने अपने आप को उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, और उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, तुम्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, हाँ तुम क्या करो, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सा, अब हरि नाम का उच्चारण करो। तो ये जो हरि नाम है, नाम बिना कलि काले ना ही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। तो कलियुगा में भगवत नाम के आश्रय लिए बिना कोई और सार नहीं है, यही सारे शास्त्र बोल रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नाम बिना किछु नाहिक आर चौदा भुवन माझे, किस भौतिक जगत में कोई चीज लेने लायक है तो भगवान के नाम के अलावा कोई और चीज को व्यक्ति, किसी और चीज को व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या किसी चीज को इकट्ठा करने में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। केवल इस 14 भुवनों में, इस भौतिक जगत में एक ही वस्तु लेने योग्य है या उचित है, वह है कृष्ण नाम। ये तबली एक श्लोक शिकाइल मोरे, कंठे करी ये श्लोक करी हविचारे। और ये सब कहते हुए मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे एक श्लोक सिखाया, और वो श्लोक कौन सा था? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम करो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता। तीन बार बारंबार नास्ते व नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है कलियुगा में, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो ये हरि नाम है उसकी महिमा को स्थापित करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु के आदेशानुसार मैंने इस हरि नाम का गंभीरता से उच्चारण करना शुरू किया, और धीरे धीरे देखा कि जैसे जैसे इस हरि नाम का मैं उच्चारण करते जा रहा था, वैसे वैसे मेरा जो मन है मति है वो कैसी हो रही थी, भ्रांत है मन, हाँ कुछ धैर्य धैर्य थे ना रहे। उन्होंने कहा मुझ में धैर्य नहीं रह गया था, मैं कभी रो रहा था कभी नाच रहा था, हंसी कांदी नाचे गाए, हाँ मैं कभी हंस रहा था नाच रहा था गा रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब ये कृष्ण नाम का मैं उच्चारण करते जा रहा था उतना ही अधिक हमें विचलित हो रहा था। तो मैंने सोचा जिन्होंने कृष्ण नाम दिया है उनके पास जाकर ही मुझे पूछना चाहिए। तो जैसे हम दवाई कोई डॉक्टर देता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स से पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, हम उसी डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि वा मंत्र दिला गोसाए कि वा तार बात जपिते जपिते मंत्र करे ल पागल। हे गोसाई आपने कैसा मंत्र दिया है, इस महामंत्र का जितना मैं उच्चारण करते जा रहा हूँ जप करते जा रहा हूँ उतना ही मैं ये जो मंत्र है मुझे पागल करते जा रहा है। हासाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन एत शुनि गुरु मोरे बलि लवचन। उन्होंने कहा ये मंत्र मुझे कभी हंसाता है कभी नचाता है कभी रुलाता है। तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा कृष्ण नाम महामंत्र यही तस्वभाव जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। और यही है कृष्ण महा कृष्ण नाम महामंत्र जप करने का रिजल्ट, यानी कि जप करते ही नींद आ जाए, हमारे साथ विपरीत होता है कि नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि कृष्ण नाम का स्वभाव ही क्या है, जैसे कोई हरि नाम को गंभीरता से उच्चारित करता है उसी क्षण कृष्ण के प्रति जो दिव्य उन्माद है भाव है उस व्यक्ति के हृदय में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने इस शिक्षा से अपने आचरण से ये सिखा रहे हैं कि ये जो हरि नाम है वो एक साधक के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसका नियमित रूप से उच्चारण करना। एवं चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए चाहे उन्होंने दक्षिण भारत का यात्रा किया तभी भी अपने मुख से हरि नाम का उच्चारण करते हुए पूरे दक्षिण भारत में 4 साल उन्होंने भ्रमण किया। 2 साल के लिए जब उन्होंने भ्रमण किया वृंदावन आए तो वृंदावन आते समय उन्होंने झारखंड में जो प्राणी है शेर है हिरन है हाथी है उन सबको कृष्ण नाम से पागल बना दिया। तो ऐसा कृष्ण नाम एक भक्त के लिए एक साधक के लिए अपना कृष्ण नाम को व्यक्ति को धन बनाना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत से निकलने के लिए और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जगदानंद पंडित अपने ग्रंथ प्रेम विवर्त में कहते हैं, जगदानंद पंडित ने कहा कि साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जिने त्यार कौन वस्तु नाय। कि मुझे एक ही चीज चाहिए साधु संग कृष्ण नाम, साधुओं के संग में मैं सदैव भगवान का जो नाम है उसका गान करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो साधुओं के संग में कृष्ण नाम चाहिए मुझे, क्योंकि कृष्ण नाम इन चीजों के अलावा इस संसार में इस संसार को जीतने के लिए जीने तैयार कौन वस्तु ना है। इस प्रकार से एक जो भक्त है वैष्णव है हाँ उसकी ये प्रार्थना होती है। और हम देखते हैं श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन से कि हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है, हरिदास ठाकुर बल्कि एक मुस्लिम या यवन परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उनकी जीवा कृष्ण नाम का उच्चारण करने के बिना रहती नहीं। जब उनको जो काजी हैं या वहां के जो नवाब थे, बादशाह थे, उनके दरबार में ले जाया गया और उन्होंने कहा कि आप ये छोड़ो, हिंदुओं के भगवान के नाम का उच्चारण करना त्याग करो, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हम मार डालेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने वो स्वीकारा, लेकिन कृष्ण नाम को छोड़ना नहीं स्वीकारा। हमारे जीवन में देखते कि जैसे हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो सबसे पहले कोई चीज हमसे छूटती है तो हमारी वो बेड बैग छूटती है। लेकिन हरिदास ठाकुर वहां उनको कई सारे जल्लादों के द्वारा 22 बाजारों में ले जाया गया और वहां जाकर उनको जोर जोर से कोड़ों से पीटा गया, फिर भी हरिदास ठाकुर के मुंह से कृष्ण नाम बंद नहीं हो रहा। हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड होए यदि जाऊ मोर प्राण, तबु तना आमी वदने छाड़ी हरिनाम, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण का पवित्र नाम है उसको मैं त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि वास्तव में कृष्ण के पास अपने आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में जो भगवान का तिजोरी है या स्टोर हाउस है, उसमें कृष्ण के पास सबसे मूल्यवान वस्तु कोई है तो वो कृष्ण नाम है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं, नाम सम वस्तु ना ये भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। किस भौतिक जगत में नाम के समान कोई वस्तु नहीं है, दिव्य वस्तु। और नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे, भंडार में तिजोरी, स्टोर हाउस। तो हम अपने मूल्यवान जो गहने हैं, ये आभूषण है या धन है, वो सब हम तिजोरी में लॉक करके रखते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने तिजोरी में किसी चीज को रखते हैं तो वो उनका कृष्ण नाम है, उनका ही खुद का नाम है। तो ऐसा भगवत नाम इस जगत का और आध्यात्मिक जगत का सबसे मूल्यवान निधि है या सबसे मूल्यवान धन है। तो ऐसे कृष्ण नाम को व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो नवदीप से कई सारे भक्त आते थे 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ करने के लिए, और वह रथ यात्रा अटेंड करते थे, चैतन्य महाप्रभु के संग में नर्तन कीर्तन आदि करते थे, कृष्ण कथा करते थे। और फिर जब ये सारे भक्तगण वहां से वापस निकलते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु को पूछते थे कि अबे हम कई महीनों के लिए वापस जा रहे हैं नवदीप। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे गृहस्थ वैष्णव सत्यराज खान आदि, और वो महाप्रभु को पूछते थे, गृहस्थ विषय आमे की मोर साधने श्रीमुख करे न आज्ञा निवेदि चरणे। उन्होंने कहा, हे गौरांग देव, हम तो गृहस्थ विषयी हैं, सर्वदा विषय उपभोग आदि में लगे रहते हैं, आप हमें अपने श्रीमुख से बताइए कि हमारे लिए उचित साधन क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु उन सबको एक आज्ञा देते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप केवल ये दो ही कार्य करो, एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन कार्यों को करने मात्र से ही तुरंत ही, लंबा समय नहीं लगेगा, तुरंत ही आप कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हो। और यही वास्तव में इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं, भव सागर में जन्म मृत्यु के लहरों में गोते लगा रहे हैं, उनके लिए यही एक में औषधि है, एनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागे, कि यही वो औषधि है जिसको जो बीमार व्यक्ति है, बद्ध जीव है, उसको सदैव इस औषधि का सेवन करना चाहिए। तो इस औषधि को हम सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो हमारा जो भव रोग है वो खत्म हो सकता है। इसलिए जो भगवान नाम है वो हमारे हृदय में अंकित होना चाहिए। जब भगवान राम लंका जा रहे थे तो उनको इतने बड़े सागर को पार करना था, भगवान पार कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ना उनके जो सेवक थे, उनके जो सेना थी, वानर सेना हनुमान, उसमें से जो इंजीनियर थे वो नील थे, तो इन सब ने सोचा कि अब इस सागर को पार करना है, इतनी बड़ी सेना को लेके उस पार जाना है तो हमें ब्रिज की आवश्यकता है, ब्रिज। तो फिर ब्रिज की आवश्यकता है तो ब्रिज बनाएंगे कैसे, सागर में ब्रिज बनाना कितना कठिनतम कार्य है। तो इन सब ने अलग अलग स्थानों से पत्थर लाए, और जो पत्थर डाल रहे वो डूब रहे हैं, कितने पत्थर लाएंगे, वो भी बंदर, सारे बंदर इस सेवा में लगे थे। तो फिर किसी एक को आइडिया आया, उसने सो कहा कि ये जो भगवान राम का नाम है बहुत शक्तिशाली है, तो उस भगवान राम के नाम को लिख दिया, अंकित कर दिया, जैसे कार्विंग की जाती है ना पत्थर के ऊपर लकीर, वो मिटती नहीं है, तो उसी प्रकार से उस पत्थर के ऊपर उन्होंने श्री राम का नाम अंकित किया, और जैसे ही डाला देखा वो तैर गया। फिर सारे बच्चों ने, बच्चे नहीं, सारे बंदरों ने सोचा यहाँ स्टेशनरी का दुकान कहाँ है, सारे बंदर गए स्टेशनरी की दुकान में, जितने पेन थे सारे पेन खरीद के लेके आए, और हर जो बंदर है एक ही काम कर रहा था, जो भी पत्थर मिले उसमें लिखते जा रहा था भगवान का नाम श्री राम श्री राम, और फिर डालते जा रहे थे, देख रहे हो तैर रहे सारे पत्थर। फिर भगवान राम ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा अमेजिंग है, तो उन्होंने सोचा ये बंदर डाल रहे हैं फिर भी पत्थर तैर रहे हैं, अभी मैं देखता हूँ। तो भगवान राम शाम के समय में उठे, देखा कि सारे बंदर सो रहे हैं, अंधेरा है, उन्होंने एक पत्थर उठाया और जैसे डाला डुब आवाज आया और पत्थर बेचारा डूब गया। तो वहां हनुमान जी हंसने लगे, कहा हे प्रभु राम ये आपका कार्य नहीं है ये सब करने का, ये हमारा कार्य है, आपने जिसको छोड़ा है वो कैसे तैर सकता है, आपने छोड़ दिया तो वो डूबेगा ही डूबेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हाँ उन पत्थरों में भी जो भगवत नाम अंकित किया गया वो पत्थर तैरने लगे। उसी प्रकार से हाँ हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, हमारी जो चेतना है, उस पर ये जो भगवत नाम है वो अंकित हो जाना चाहिए। तो हम तो पत्थर के भांति हैं, हमारा हृदय पत्थर के समान वैसे ही बहुत हार्ड है, कृष्ण नाम कृष्ण कथा आदि के लिए पिघलता नहीं है। तो ऐसा जब नाम हम आत्मा के ऊपर हमारे हृदय पर अंकित करेंगे तभी हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और वास्तव में वो ब्रिज कोई पत्थरों का ब्रिज नहीं था, ब्रिज क्या है, नाम ब्रिज था, हरि नाम का वो ब्रिज है। तो हमें भी आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भौतिक जगत से एक ही ब्रिज है, और वो भी ब्रिज क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवत नाम सबसे श्रेष्ठतम साधन है, जिसको महासाधन कहा गया है। जितने भी साधन हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति का, उसे महासाधन कहा गया है। बल्कि इस हरि नाम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता गण भी सदैव लालायित रहते हैं, इवन माया देवी। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का एक पास टाइम आता है जिसमें वर्णन आता है कि जब हरिदास ठाकुर शांतिपुर के नजदीक फुलिया ग्राम में निवास करते थे, एक गुफा में नदी के किनारे अद्वैत आचार्य के सन्निकट, तो वहां वो सदैव हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। तो एक दिन ज्योत्स्नामय रात्रि शाम के समय चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकट हो गया था, और यह जो गंगा नदी की लहरें उड़ रहे थे उस समय हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। उसी समय एक दिव्य एक स्त्री आती है हरिदास ठाकुर के पास, और वह हरिदास ठाकुर, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो हरिनाम में मग्न थे, दिन रात हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, तो उनके गुफा या उनकी कुटिया के बाहर ही बहुत अच्छी तरह से गोबर से लेपित किया हुआ ये था, तुलसी था। तो ये स्त्री आकर उस तुलसी को प्रणाम करती है, परिक्रमा करती है और हरिदास ठाकुर के पास जाती है और कहती है कि आप तो बहुत ही साधु स्वभाव के हैं, सौम्य हो, तो आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए, मैं आपका संग लाभ करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हाँ मैं अभी बिजी हूँ क्योंकि मैंने व्रत ले रखा है भगवान नाम जप करने का। जैसे ही हरिनाम खत्म हो जाएगा वैसे ही आपकी जो इच्छा है उसकी मैं पूर्ति करूंगा। तो वास्तव में हरिनाम कभी खत्म नहीं होता है। हम कहते माला खत्म हो गई, खत्म होना मीन्स डेड हो जाना, मरना। हरिनाम तो निरंतर प्रोसेस है, सततम कीर्तयन्तो माम, गीता में कृष्ण कहते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर तीन दिन तीन रात सदैव हरिनाम ले रहे हैं, तो ये जो युवती थी जिसका गौर वर्ण था वो आकर कहते कि आप तो धोखा दे रहे हो, मैं देख रही हूँ तीन दिन तीन रात आपका हरिनाम पूर्ण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा मैंने इतना व्रत ले रखा है, क्या करो, व्रत तो मुझे पूर्ण करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा, वो हरिदास ठाकुर का गुणगान करती है और वो कहती है, तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करी ते आयला परीक्षा तुमार। मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं, मैं तो साक्षात माया देवी हूं और माया देवी क्यों आई हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मादि जीव आमी सवारे मोहिलो, एकला तुम्हारे आमी मोहिते नारिलो। मैंने ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र जीव जो कीट है वहां तक सबको मोहित कर दिया है, लेकिन पहली बार आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरिदास ठाकुर ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार मैं आपका अकेला तुम्हारे आमी हम मोहित नारी लू, अकेले तुमको हमें मोहित नहीं कर पाई। महाभागवत तुम्हें तुम्हारे दर्शने तुम्हारे कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, तुम तो महाभागवत हो, तुम्हारे दर्शन से तुम्हारे कृष्ण नाम संकीर्तन के श्रवण से चित्त शुद्ध है, चाहे कृष्ण नाम लयते कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर अमाते। आपके हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मेरा चित्त शुद्ध हो गया है और मैं आपसे कृष्ण नाम स्वीकार करना चाहती हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। क्योंकि पूर्व पहले क्योंकि माया किसकी पत्नी है, शिव जी की, और शिव जी सदैव राम नाम का जप करते हैं। तो माया देवी ने कहा कि मैंने पहले ही अपने जो पति शिव जी है उनसे राम नाम की दीक्षा ली है, राम नाम मैंने स्वीकार किया है, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, उन्होंने प्रेम की वन्या प्रेम की बाढ़ ला दी है सब जगह और उसमें हर जीव डूब रहा है, मैं भी उससे वंचित हूँ, मैं भी इस कृष्ण नाम का जो वन्या है बाढ़ है उसमें डूबना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से माया देवी भी क्या करती है, प्रेम मांगती है। माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्माय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माय। कि कहते हैं माया देवी माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, क्या आश्चर्य है। इससे पहले के श्लोकों में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इवन ब्रह्मा शिव आदि देवतागण इवन लक्ष्मी भगवत नाम का उच्चारण करती हैं। उतना ही नहीं, कृष्णदास कविराज ने कहा कि हमारे जो ये ब्रजेंद्र नंदन है वो भी क्या कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरि नाम का आस्वादन कर रहे हैं। तो फिर ये माया देवी प्रेम मांगे इसमें क्या आश्चर्य है, साक्षात कृष्ण भी इस हरि नाम को लेने के लिए लालयित है। तो कहते हैं साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए, तो इन दोनों की कृपा के बिना जो भगवत प्रेम है वो अंकुरित नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा। तो इसलिए भक्त का ये कर्तव्य है कि अपने आध्यात्मिक जीवन में उसको अधिक से अधिक श्री नाम प्रभु के प्रति आसक्त हो जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कविता लिखी मार्किनी भागवत धर्म, तो उन्होंने उसमें कहा, लिखते हुए प्रभुपाद कहते कि हे कृष्ण आप मुझे बेहद स्थान में ले आए हो जहां लोग रजो और तमोगुण से प्रचन्न है, और ये कैसे आपके भगवत भक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, यहाँ आप इतने दूर मुझे लाए हो तो जरूर कुछ काम आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो आप मुझे जैसा चाहे वैसे नचाओ। मेरा नाम तो भक्ति वेदांत रखा गया है, लेकिन ना मुझ में भक्ति है ना ज्ञान है, लेकिन एक चीज है, नामे खूब धरो, लेकिन एक क्या है, आपका ये जो कृष्ण नाम है उसके प्रति मेरे प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो यही एक चीज है जो साधक को आध्यात्मिक बल प्रदान करता है भगवत भक्ति में। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि इस भगवान नाम को व्यक्ति भगवान नाम को ग्रहण करना चाहिए। सनातन गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं, वो ब्राह्मण उनके पास धन मांगने आया, सनातन गोस्वामी ने कहा उधर पारस पत्थर मैंने डस्टबिन में रखा है, तो वहां से ले जाओ। वो पत्नी के पास वापस जाता है घर में, तो वो कहते हैं कि जिस साधु के पास पारस पत्थर है जो कचरे में फेंका था, डस्टबिन में फेंका था, इसका मतलब इससे भी मूल्यवान वस्तु उसके पास होनी चाहिए। तो पत्नी की बात सुन के जाता है, कहता है सनातन गोस्वामी, ओ महाशय, आप इससे भी मूल्यवान वस्तु आपके पास है शायद, इससे भी मूल्यवान धन, हाँ हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने कहा इसको पहले फेंक दो, दोनों एक साथ नहीं, हम दोनों चाहते हैं भौतिक जीवन आध्यात्मिक, दोनों नाव में पाव देख के रखकर जगत को पार करना चाहते हैं, पार नहीं होंगे हाँ, इस भव सागर के सागर में गिर पड़ेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ ही अभी यमुना बह रही है, देखो जोर से फेंक दो इस पारस पत्थर को, तब मैं तुम्हें वो मूल्यवान वस्तु दूंगा। जैसे उन्होंने फेंका, सनातन गोस्वामी ने मूल्यवान वस्तु दी, और वो वस्तु क्या थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जो यमराज हैं छठे स्कंद में यमदूतों को कहते हैं, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतशन स्मरति तरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शीर एकदापि तानानय धमसतो कृत विष्णु कृत्या। उन्होंने कहा कि हे यमदूतो, उन लोगों को मेरे पास लेके आओ, किन लोगों को, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देह, जिनकी जीव भगवान के गुण और उनके नाम आदि का उच्चारण नहीं करती है, चेतच न स्मरति तत् शरणारविंद, और जिनका चित्त आपके चरण कमलों का स्मरण नहीं करता है, कृष्णाय नो नमति यस शीर एकदापि, और जिनका ये सर कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम की मुद्रा में गिरता नहीं है, और जो लोग विष्णु कृत्य भगवान की प्रसन्नता के हेतु जो कार्य है उसमें नहीं लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आ जाओ। इस प्रकार से इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अल्टीमेट जो यज्ञ है उस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए हमें सावधान करते हैं कि इस प्रकार सरकार की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए जनता को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। हरे कृष्णा।